रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। भगवान श्री राम की कथा कहने से पहले भगवान श्री राम को श्री लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, उनके मित्र श्री सुग्रीव और वायुपुत्र श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो रामायण की चर्चा प्रारंभ की थी पिछले मंगलवार को और आज इसे जारी रखेंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली बार कि कैसे रामायण करोड़ों करोड़ों श्लोकों में इसका गान हुआ है, लेकिन इसका एक एक शब्द महापातक नाशनम, बड़े से बड़े पाप का नाश करता है। वाल्मीकि गिरि संभूतम, वाल्मीकि नामक पर्वत से निकली है महानदी, पुनाति भुवनत्रयम, तीनों लोकों को पावन करती है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जैसे गंगा तीन स्तरों पर कार्य करती है, ऊपरी लोकों में पृथ्वी पर और नीचे के लोकों में, उसी प्रकार ये जो रामायण है, हरि कथा है, ये भी हमारे शरीर पर, हमारे मन पर और हमारी चेतना अर्थात आत्मा पर प्रभाव करती है। रामायण का वर्णन किया था कि कई स्थानों पर रामायण पाई जाती है। मलेशिया में रामायण है, थाईलैंड में रामायण है, ऐसे कई स्थानों पर, इंडोनेशिया इत्यादि, जहाँ आज भी राम के नाम हैं, रामायण के चिन्ह हैं। अलग अलग रामायणों में अलग अलग वर्णन किया गया है, थोड़ी सी कथाएं अलग हैं, और भारत में भी कई प्रकार के रामायण हैं। संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जो आदि काव्य कहा जाता है, और उसके अलावा अध्यात्म रामायण जो पुराणों का ही एक हिस्सा है, साथ ही साथ अलग अलग भाषाओं में, तमिल भाषा में कंब रामायण इत्यादि। तो बड़ी प्रसिद्ध है ये राम की कथा। तो हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि किस प्रकार शिवजी से प्रश्न किया पार्वती देवी ने, जिसका वर्णन अध्यात्म रामायण में आता है, और उन्होंने कहा कि एक संशय है हृदय में। वैसे तो सब जानते हैं भक्ति प्रसिद्ध भव मोक्षणाय, भक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, ये सारे जगत में प्रसिद्ध है कि भक्ति से ही इस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक संशय था उनके हृदय में कि क्या श्री रामचंद्र ये भगवान हैं, और अगर भगवान हैं तो कैसे भूल गए, और अगर भगवान भूल जाते हैं तो हम कैसे इनकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को तो भूलना नहीं चाहिए, भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर वो कैसे भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं। तो ये प्रश्न किया था और शिव जी ने उसका उत्तर देते हुए ये बतलाया कि कैसे श्रीमती सीता देवी ने हनुमान जी को भगवान के विषय में ज्ञान दिया, स्वयं श्री राम ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, जिसे श्री राम हृदयम कहा जाता है, और उसके द्वारा उन्होंने समझाया कि भगवान कभी अज्ञान में नहीं आते। जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं होता, ऐसे ही कभी भगवान में अज्ञान आ नहीं सकता। और फिर भगवान की स्थिति का वर्णन उन्होंने किया, आत्मा क्या है, परम आत्मा क्या है, ये भौतिक प्रकृति क्या है। भगवद गीता में भी कहा गया है कि असली ज्ञान वो है कि हम ये जाने कि ये जो क्षेत्र अर्थात ये शरीर है, इसको चलाने वाला कौन है। क्षेत्र को जाने, क्षेत्रज्ञ को जाने, इस भौतिक प्रकृति को जाने, भगवान को जाने और इनके बीच के संबंध को जाने, ये असली ज्ञान है। तो ऐसा ही पार्वती देवी को भगवान के विषय में शिव जी ने वर्णन किया। और फिर पार्वती ने कहा कि अब मैं और विस्तार से सुनना चाहती हूँ, तो फिर आगे की कथा हुई। पद्म पुराण में, वाल्मीकि रामायण में भगवान के प्राकट्य की कथाओं को दिया गया है, कैसे भगवान प्रकट हुए। पद्म पुराण में कहा गया है कि स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा देवी, इन्होंने बहुत तपस्या की भगवान को प्राप्त करने के लिए। और फिर भगवान ने इन पर कृपा की। वैसे अलग अलग स्थानों में थोड़ा अलग वर्णन भी है। पद्म पुराण कहता है कि वही स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आए। उसमें तो ये भी वर्णन है कि वही आगे चलकर वसुदेव और देवकी बने। और फिर अब कलयुग में वो हरिगुप्त नाम से प्रसिद्ध होंगे, संभाल ग्राम में वो रहेंगे। और उनसे फिर भगवान के एक और अवतार, इस कलयुग के कल की अवतार प्रकट होंगे, ऐसा पद्म पुराण में भविष्यवाणी की गई है। तो दशरथ महाराज, अब इनका वर्णन प्रारंभ करते हैं। वाल्मीकि मुनि ने जो रचना की, उन्होंने 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि रामायण की रचना की। और फिर इसे लव और कुश, जो उनके ही आश्रम में रह रहे थे, उन्हें पढ़ा दिया। और फिर ये लोग गली गली जाकर उसको गाने लगे और सब लोग बड़े मंत्रमुग्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए इनकी कथाओं को सुनकर, इनके गान को सुनकर। और फिर अंततः भगवान भी आकर्षित हुए, श्री रामचंद्र, जब उन्होंने सुना, और उन्होंने अपने दरबार में उन्हें बुलाया और कहा कि यहाँ कथा करो। और फिर उन्होंने सभी को आदेश दिया, अपने जितने मंत्री थे, भाई थे इत्यादि, सब लोगों को, सारी प्रजा को, कि अब सब लोग बैठ जाओ और कथा सुनो। देखिए, भगवान भी अपनी ही कथा में आनंद लेते हैं। भगवान की कथाएं हैं ही ऐसी। श्रील प्रभुपाद ने जब कृष्णा नाम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नाम के ग्रंथ की रचना की, तो जब उसमें से सुनते तो उन्हें बड़ा आनंद आता। तो भक्त पूछते थे, अरे प्रभुपाद, ये तो आपने ही लिखा है, फिर आपको कैसे आनंद आ रहा है इसको बार बार सुनने में। तो प्रभुपाद कहते थे, कृष्ण की कथा है, और वैसे भी मैंने नहीं लिखा, कृष्ण ने लिखा है। कृष्ण की कथाओं का आनंद कृष्ण स्वयं लेते हैं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अब कथा यही होगी दरबार में, और लव कुश उसको गाने लगे। तो दशरथ महाराज का वर्णन किया, अयोध्या का वर्णन किया। वैसे दशरथ महाराज, स्वयं श्री रामचंद्र भी इक्ष्वाकु कुल में आते हैं, इसलिए श्री रामचंद्र का और एक नाम है इक्ष्वाकु कुलधन, अर्थात जो इक्ष्वाकु कुल में रत्न के समान है, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें इक्ष्वाकु कुलधन कहा जाता है। दशरथ महाराज की परंपरा या वंश बड़ा प्रभावशाली रहा है। सगर महाराज के वंशज हैं दशरथ महाराज। सगर महाराज की कथा थोड़े समय बाद हम लोग करेंगे, जब भगवान श्री रामचंद्र के विवाह का प्रसंग होगा तो उस समय पर सगर महाराज की कथा को कहेंगे। सगर महाराज की कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी प्रेरणादायक है, बहुत अच्छे अच्छे निर्देश हमें उस कथा से मिलते हैं। तो सगर महाराज के बाद हुए अंशुमन, अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप महाराज, और महाराज दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने बहुत तपस्या की। अंशुमन ने भी तपस्या की, वो चाहते थे कि गंगा पृथ्वी पर आए, सफल नहीं हुए। महाराज दिलीप ने की, वो भी सफल नहीं हुए। फिर उनके पुत्र भगीरथ ने तपस्या की और वो सफल हुए, और तब गंगा नदी पृथ्वी पर आई। इसीलिए उनका और एक नाम है भागीरथी, क्योंकि भगीरथ की तपस्या के कारण गंगा नदी इस पृथ्वी पर आई, इसलिए उन्हें भागीरथी कहते हैं। तो भगीरथ के वंश में आगे चलकर खटवांग महाराज आए, जो बड़े प्रतापी थे, और खटवांग महाराज के पुत्र थे दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए रघु, जिनके कारण इस कुल को रघुकुल भी कहते हैं। और रघु के पुत्र थे अज, और अज के पुत्र थे दशरथ महाराज। तो ये इनकी वंश परंपरा थी, बड़े महान प्रतापी राजा हुए हैं इस कुल में, इस वंश में। तो ऐसे दशरथ महाराज राज्य कर रहे थे अयोध्या पर, सुखी नहीं थे। दशरथ महाराज ने कई विवाह किए, कौशल देश से कौशल्या से उनका विवाह हुआ और एक संतान हुई जिसका नाम था शांता। एक लड़की हुई उन्हें कौशल्या देवी से, लेकिन दशरथ महाराज तो पुत्र चाहते थे, क्योंकि राजा थे, और एक राजा के लिए पुत्र ना होना बड़ी चिंता का विषय था, क्योंकि आगे और कौन मेरे राज्य को चलाएगा, ये उनकी चिंता थी। वैसे दशरथ महाराज भक्त हैं, इसीलिए वो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए चाह रहे थे कि एक पुत्र हो जाए, ताकि मैं अपने राजा का कर्तव्य पूरा कर सकूं। और वैसे भी तो भगवान प्रकट होने वाले थे, इसीलिए तीव्रता थी उनके हृदय में। तो फिर दशरथ महाराज ने एक विवाह किया, एक ही पुत्री हुई। प्रसन्न नहीं थे, शांत नहीं थे, पुत्री का नाम तो शांता था। तो अंग देश के एक राजा थे, राजा रोमपाद, उनके पुत्र तो थे, पुत्रियां नहीं थी, तो वो भी दुखी थे, वो चाहते थे एक पुत्री हो जाए। देखिए ये भौतिक जगत है, जिसके पुत्री है वो संतुष्ट नहीं, वो पुत्र चाहता है। जिसके पुत्र है वो पुत्री चाहता है। जिसके संतान नहीं है कोई भी, वो संतान चाहता है। जिसकी संतान है वो उन्हें हॉस्टल में भेज देना चाहता है। कोई संतुष्ट नहीं है इस जगत में, ये भौतिक जगत है, जहां हमेशा हम कुछ ना कुछ चीज चाहते हैं, असंतुष्टि बनी रहती है। असंतुष्टि ये भौतिक जगत का स्वभाव है, और संतुष्टि ये आध्यात्मिक जगत का स्वभाव है। तो जब तक हम इस जगत में हैं, भौतिक जगत में, असंतुष्टि बनी रहती है। कहीं भी कोई भी संतुष्ट नहीं है। हम कुछ ना कुछ चाहते हैं, चाहे पुत्र की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, मगर संतुष्ट नहीं है। तो खैर, राजा रोमपाद ने दशरथ महाराज से कहा कि वैसे भी तो तुम तो पुत्र चाहते हो, तो एक काम करो, ये पुत्री मुझे दे दो। तो दशरथ महाराज ने गोद दे दिया शांता को। फिर उन्होंने विवाह किया सुमित्रा से, जो मगध देश की राजकुमारी थी, तो कौशल्या से तो एक पुत्री हुई थी लेकिन सुमित्रा से कोई संतान नहीं हुई। तो वशिष्ठ मुनि ने उन्हें उनसे कहा कि आप कैकई प्रदेश में जाइए, ये अफगानिस्तान के सीमा पर है, आज का जो अफगानिस्तान है उसकी सीमा पर है ये प्रदेश कैकई, उस समय था, आज उसको सिंध प्रदेश भी कहते हैं। तो आप जाइए वहां पर और वहां की राजकुमारी से विवाह कीजिए। तो दशरथ महाराज फिर कैकई प्रदेश में गए, जिसके राजा का नाम भी कैकई था और उनकी पुत्री का नाम कैकई। तो वहां पर गए, विवाह करने की इच्छा प्रकट की। कैकई महाराज ने दशरथ से कहा कि तुम्हारी जो पहले की रानियां हैं, अगर उनको संतानें होंगी तो ये निश्चित है तुम उनको राज्य दोगे, फिर मेरी पुत्री को क्या मिलेगा। तो उस समय दशरथ महाराज ने कहा कि देखिए, अब मैं, मेरी उम्र भी काफ़ी हुई है और काफ़ी समय से मेरी अन्य रानियों को संतानें नहीं हुई हैं, तो इसलिए ये निश्चित है कि उन्हें संतान नहीं होगी। लेकिन कैकई महाराज ने कहा नहीं, आपको लिख कर देना होगा कि मेरी पुत्री के जो संतान होगी, जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो दशरथ महाराज ने लिख कर दिया, इसे कन्या शुल्क कहते हैं। क्षत्रियों में ये प्रथा थी कन्या शुल्क की, अर्थात जब आप किसी कन्या से विवाह करते, किसी राजकुमारी से विवाह करते, तो आपको लिख कर देना होता था कि इस राजकुमारी के क्या अधिकार होंगे, क्या इसको संपत्ति मिलेगी और कितनी भूमि इसको प्राप्त होगी, ये सारी चीज़ें लिख कर देनी होती थी, इसे कन्या शुल्क कहते थे। तो कैकई महाराज ने कहा कि आपको कन्या शुल्क लिख कर देना है, आप लिख कर दीजिए कि जो कोई भी मेरी पुत्री का पुत्र होगा उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो दशरथ महाराज ने लिख कर दे दिया, लेकिन इसको गोपनीय रखा था, इसको सबको नहीं बताया था, केवल तीन लोग जानते थे इसको, एक वशिष्ठ मुनि, दूसरे स्वयं दशरथ महाराज और तीसरे कैकई, जो कैकई के पिता थे, ये तीन ही लोग जानते थे इस बात को। लेकिन जब विवाह हुआ तो अपनी पुत्री के प्रेमवश कैकई महाराज ने अपनी पुत्री को ये बात बतला दी कि देखो, ध्यान रखना, दशरथ महाराज ने ये कन्या शुल्क दिया है कि जो भी तुम्हारा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो ऐसे उन्होंने कैकई से भी विवाह किया, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुई थी, बड़े चिंतित थे दशरथ महाराज। भगवान को प्रकट होना था, अब भगवान तो कोई साधारण अवस्था में प्रकट नहीं होते हैं। देखिए, भगवान जब भी प्रकट होते हैं ज़्यादातर भक्तों को कष्ट देकर ही प्रकट होते हैं। देवकी और वसुदेव को कितना कष्ट दिया, देवकी ने अपने 6 बच्चों को अपनी ही आँखों के सामने मरते हुए देखा, अपने पति को जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़े हुए देखा, कई वर्षों तक यह अन्याय सहा और फिर अंत में कृष्ण प्रकट हुए। कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे, कृष्ण पहले ही क्यों नहीं प्रकट हो गए, अगर पहले ही पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते तो फिर देवकी को कष्ट नहीं होता, लेकिन इतना कष्ट हुआ देवकी को, तो क्यों नहीं हुए। भगवान देवकी के आनंद को बढ़ा रहे थे, बाहरी दृष्टि से देवकी को दुख था, कष्ट था, लेकिन देवकी के हृदय में आनंद बढ़ रहा था, तीव्रता बढ़ रही थी भगवान के दर्शन की। इसी प्रकार दशरथ महाराज, इतने बड़े प्रतापी राजा, उनका नाम ही दशरथ इसलिए हुआ कि जब वो युद्ध किया करते थे तो 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध करते थे, और जब कोई उन्हें देखता था युद्ध करते हुए तो ऐसा प्रतीत होता था मानो एक नहीं 10 रथ हैं अलग अलग, और 10 व्यक्ति उन 10 रथों पर युद्ध कर रहे हैं अलग अलग दिशा में, इतना तीव्रता से युद्ध करते थे, इसीलिए उन्हें दशरथ कहा गया। और जब देवताओं का युद्ध होता था तो देवता उन्हें बुलाया करते थे, हमारी तरफ से आकर युद्ध कीजिए असुरों से, इतने प्रतापी राजा थे। लेकिन फिर भी कष्ट, पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही, उनकी उम्र भी कई हजार वर्षों की हो गई थी, बड़े वृद्ध हो चले थे, लेकिन फिर भी संतान पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था, ये दुख था। तो भगवान जब प्रकट होते हैं, भगवान कई कारणों से प्रकट होते हैं। पार्वती देवी ने शिव जी से प्रश्न किया एक समय कि भगवान के प्रकट होने का क्या कारण है, भगवान क्यों प्रकट होते हैं। तो पार्वती के इस प्रश्न को सुनकर शिव जी ने कहा कि भगवान के प्रकट होने के कई कारण हैं, अनेकों कारण हैं, उन्हें कहा नहीं जा सकता, फिर भी मैं तुम्हें थोड़े बहुत कारण बताता हूं। तो उन्होंने कहा कि भगवान प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है। भगवद गीता में भी भगवान इसको कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान तब प्रकट होते हैं जब पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, भगवान प्रकट होते हैं जब राक्षसों का प्रभाव बहुत बढ़ता है, तो राक्षसों के वध के लिए वो प्रकट होते हैं। तीसरा, वो प्रकट होते हैं ब्राह्मणों की गायों की रक्षा के लिए। इसीलिए भगवान के विषय में कहा जाता है, भगवान को जब हम प्रणाम करते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, कि हम कहते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो गायों की रक्षा करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। जय श्री श्री राधा गोकुलानंद। तो शिव जी कहने लगे कि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान प्रकट होते हैं। साथ ही साथ भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, अनुग्रहाय भक्तानां मानुष्यं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भागवत में बताया गया है कि भगवान जब आते हैं तो अनुग्रह करने के लिए आते हैं अपने भक्तों पर, अनुग्रहाय भक्तानां। तो ऐसे भगवान आते हैं अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, जैसे भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, नरसिंह रूप लिया, वराह रूप लिया, ये भक्तों पर कृपा थी, जय और विजय पर कृपा करने के लिए, प्रहलाद महाराज पर कृपा करने के लिए। जय विजय बड़े श्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, और जब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे लीला करनी है, मुझे वीर रस का आस्वादन करना है, मुझे युद्ध करना है, किससे करूंगा युद्ध, कौन है मेरे बराबर, भगवान के बराबर तो कोई नहीं है। जब शटरूपा और स्वयंभू मनु ने बड़ी कड़ी तपस्या की, भगवान प्रकट हुए, तो भगवान से उन्होंने मांगा कि हम आपके जैसा ही पुत्र चाहते हैं। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, फिर मुझे ही आना पड़ेगा। तो जब भगवान की इच्छा हुई तो अपने ही दो भक्तों को, जय और विजय को, उन्होंने भेज दिया पृथ्वी पर। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने और फिर भगवान आए, अलग अलग रूप लिए, आस्वादन किया वीर रस का भगवान ने, तो भगवान की इच्छा से होता है। तो शिव जी कहने लगे कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए आते हैं, और कभी कभी वो ऐसे कारणों से भी आते हैं, पार्वती देवी को कहते हैं, जो बड़े विचित्र होते हैं। जैसे एक समय वो प्रकट हुए नारद मुनि के श्राप के कारण, तो जैसे ही पार्वती ने सुना कि नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया, तो बड़े बड़े आश्चर्य में हो गई, और उन्होंने पूछा कि उन्होंने रोक दिया शिव जी को। उन्होंने कहा कि ये कैसे, नारद मुनि इतने महान भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं, और इन्होंने श्राप दिया भगवान को, ये जरा विस्तार में सुनाइए। तो फिर शिव जी कहने लगे कि एक समय नारद मुनि तपस्या करने गए और नारद मुनि को बड़ा रमणीय स्थान मिला, बहुत अच्छा स्थान था, वन था जहाँ पर नदी बह रही थी, बड़ा रमणीय स्थान था। तो नारद मुनि को बड़ा आनंद आया और नारद मुनि ने सोचा कि ये बहुत अच्छा स्थान है भगवान के स्मरण के लिए, मुझे यहाँ बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। वैसे तो दक्ष प्रजापति का मुझे श्राप मिला है कि मैं एक स्थान पर बैठ नहीं सकता, रह नहीं सकता। आप सब जानते हैं कि जब दक्ष ने नारद मुनि को श्राप दिया था, जब नारद मुनि ने उनके पुत्रों को सबको वैरागी बना दिया, तो श्राप दिया था दक्ष प्रजापति, ये प्रजापति हैं, प्रजा की उत्पत्ति करना इनका कार्य है, इसलिए हजारों पुत्र उत्पन्न किए, 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनको कहा कि तुम्हें विवाह करना है और विवाह करके फिर तुम लोगों को आगे प्रजनन करना है ताकि ये पृथ्वी पर उत्पत्ति हो सके, सृष्टि हो सके। ये हमारी सेवा है ब्रह्मा जी के प्रति, भगवान के प्रति। तो 10,000 पुत्रों से कहा कि विवाह के पहले तपस्या करना चाहिए। ये वो युग था जब हर चीज के लिए तपस्या की जाती थी और नियम ये था कि जब व्यक्ति विवाह करना चाहे, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहे, तो उससे पहले उसे कड़ी तपस्या करनी होती थी ताकि वो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख जाए और फिर जब गृहस्थ जीवन में जाए तो वही विरक्ति का भाव रहे। हमारे यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म भी इसीलिए बना है। वर्णाश्रम धर्म इसलिए बनाया गया है ताकि व्यक्ति प्रारंभ में ब्रह्मचारी जीवन में रहकर विरक्ति की भावना को सीखे और फिर उसी विरक्ति की भावना को लेकर या तो सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश करें या फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। ब्रह्मचारियों के लिए ये अनुमति होती है कि वो चाहें तो सीधे संन्यास आश्रम में ग्रहण कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं, या फिर गृहस्थ आश्रम में। लेकिन विरक्ति का भाव दोनों जगह बना रहना चाहिए। गृहस्थ आश्रम ये कोई भोग करने का स्वच्छंद आश्रम नहीं है, ये भी आश्रम है, इसलिए इसे आश्रम कहा गया है, जहां पर विरक्ति के भाव को लेकर पति पत्नी साथ में मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं, ये गृहस्थ आश्रम है। तो इसीलिए दक्ष ने कहा तपस्या कीजिए, तपस्या करने जा रहे थे, नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा कहाँ जा रहे हो तपस्या करने, किस लिए, विवाह करना है। नारद मुनि ने कहा कि विवाह ही इतनी बड़ी तपस्या है, उसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है, तो एक काम करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान के लिए तपस्या करो, अपना जीवन समर्पित करो। तो उन्होंने समर्पित कर दिया, 10,000 पुत्र सब वैरागी हो गए, वापस घर कभी नहीं गए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया नारद मुनि पर, फिर से 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उन्हें भेजा, फिर नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने कहा कहाँ जा रहे हो तपस्या, किस लिए, विवाह करना है। नारद मुनि ने कहा महाजनो ये न गतः सपन्था, आपको अपने बड़े भाइयों के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। बड़े भाइयों ने क्या किया, वैराग्य, आपको क्या करना है, वैराग्य। चलो 11,000 शिष्य एक ही समय पर। तो नारद मुनि को बड़ा क्रोध करते हुए दक्ष ने श्राप दिया, कहा कि जिस प्रकार तुमने इनको घर में नहीं रहने दिया, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कभी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे, हमेशा घूमते रहोगे। तो नारद मुनि को बहुत अच्छा, धन्यवाद, प्रचारकों को तो यही चाहिए। प्रभुपाद जब उस तात्पर्य को लिखते हैं इस श्लोक में जहां भागवत में श्लोक आता है, तो प्रभुपाद कहते हैं उस तात्पर्य में कि हमें भी अर्थात प्रभुपाद को कई माता पिताओं ने ऐसे श्राप दिए हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने उनके बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया, विवाह नहीं करने दिया, सन्यासी बना दिया। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें भी कई माता पिताओं ने श्राप दिया है, जिसके कारण हम सारी पृथ्वी पर प्रचार कर पा रहे हैं। तो प्रचारकों के लिए तो ये भेंट है, वरदान है ऐसा श्राप। हाँ, इसका प्रयास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें जाकर हर एक माँ बाप को तंग करना चाहिए कि आप हमें श्राप दीजिए, श्राप दीजिए। तो नारद मुनि को श्राप था, लेकिन जब ये स्थान देखा तो उन्होंने कहा भगवान का स्मरण करना है, इसलिए श्राप रुक सकता है। तो स्थान में बैठकर तपस्या करने लगे, उग्र तपस्या। और जब भी कोई बड़ी कड़ी तपस्या करता है तो इंद्र को बड़ी चिंता हो जाती है। इंद्र सोचने लगे नारद मुनि को क्या हुआ, अच्छे भले भक्त थे, आत्मज्ञानी थे, भक्ति कर रहे थे, सब जगह जाकर भगवान का प्रचार कर रहे थे, अचानक तपस्या क्यों कर रहे हैं, क्या इंद्र बनना चाहते हैं। तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत गलत बात है, नारद मुनि को ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, अब मुझे अपना काम तो करना ही है। तो ब्रह्मलोक से एक अप्सरा को बुला लाए। उन्होंने एक अप्सरा को नहीं, अप्सरा तो बाद में भेजी, पहले उन्होंने कामदेव को भेजा। कामदेव को बुला, इधर आओ, देखो वो नारद मुनि वहाँ तपस्या कर रहे हैं, वो इंद्र बनना चाहते हैं, तुम जरा जाओ और अपना प्रभाव दिखाओ। तो कामदेव वहाँ पर आए, उस स्थान को बड़ा रमणीय बना दिया, रंभा इत्यादि अप्सराओं को बुलाया और वो अप्सराओं ने नृत्य करने लगी, लेकिन कामदेव प्रभावित नहीं कर पाए। भगवान के स्मरण में लगे थे नारद मुनि, बिल्कुल प्रभाव नहीं हुआ। कामदेव ने अपना सारा प्रभाव कर लिया तो भी कुछ नहीं हुआ। इस जगत में भी प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं भागवत के तात्पर्य में कि जब कोई बहुत बड़ी तीव्र तपस्या करना चाहता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो देवता बाधा जरूर डालते हैं, कोई ना कोई ऐसे बाधाएं भेज देते हैं कि फिर उसकी तपस्या समाप्त करके वो फिर वो घर परिवार में फंस जाता है। तो नारद मुनि के लिए भी भेजा, लेकिन नारद मुनि तो भगवान के भक्त हैं, उनको कोई चिंता नहीं, वो अपने स्मरण में लगे थे। तो अंततः कामदेव हार गए, प्रभावित नहीं कर पाए नारद मुनि को। तो कामदेव ने सोचा कि अब कहीं नारद मुनि क्रोध में आकर मुझे जला नहीं डालें। आप जानते हैं एक बार शिवजी ने जला दिया था कामदेव को क्रोध में, तो कहीं जला नहीं डाले, इसलिए जाकर उनके चरण पकड़ लिए, क्षमा याचना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो नारद मुनि बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। नारद मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने अपना कर्तव्य किया, आपको जो कहा गया आपने आदेश का पालन किया, इसलिए कोई चिंता नहीं, आप जाइए। तो चले गए। लेकिन इस घटना से नारद मुनि के हृदय में थोड़ा सा अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया है। देखिए, भक्ति ये एक ऐसा मार्ग है जहाँ स्थूल और सूक्ष्म रूप से अहंकार प्रवेश करता ही रहता है। हम पिछली बार भी वर्णन कर रहे थे, हमारा जीवन क्या है, केवल एक नाव की तरह है, कागज की नाव जो पानी पर बहती है और अहंकार करती है कि देखो मैं पानी पर तैर रही हूँ, लेकिन जानती नहीं है कि ये बड़ा क्षणिक है। हम सब का जीवन भी ऐसे ही है, हमें अहंकार होता है अपने धन का, अपने बल का, अपने सौंदर्य का, अपने यश का, अपने ज्ञान का या अपने वैराग्य का, बहुत अहंकार हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कितने समय है। भागवत में कहा गया है ये जो मनुष्य देह है ये क्षण भर में समाप्त होने वाला है। दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। निमि महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत बड़ा जीवन नहीं चाहिए, ये क्या मनुष्य जीवन है, क्या है ये। दुर्लभम मानुषम देहो, हाँ ये मनुष्य जो देह है बहुत दुर्लभ है, कई लाख योनियों में कई बार घूमने के बाद मिलता है। दुर्लभम मानुषम देहो देहिना क्षण भंगुर, लेकिन कितना समय रहता है, क्षण भंगुर है। हमें लगता है बहुत साल हो गए, 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल, लेकिन है क्या ये क्षण भंगुर, समाप्त हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्य, उससे भी दुर्लभ एक चीज है, वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे भक्तों का दर्शन जो वैकुंठपति भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय हैं, अर्थात भक्तों का दर्शन। तो इसीलिए ये अहंकार हमें हो जाता है हमारे रूप बल इत्यादि का, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक समय समाप्त तो होने वाला है। अगर व्यक्ति सदैव इसको स्मरण रखे तो कभी झगड़े नहीं होंगे, कभी युद्ध नहीं होंगे, कभी लोगों में मतभेद नहीं होंगे। हम जानते हैं ये जाने वाला है तो उसको बचाने के लिए हम लड़ेंगे नहीं। कृष्ण भावनामृत भक्ति ये इतना शक्तिशाली साधन है सारे जीवन में, सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में शांति लाने का। केवल कुछ सिद्धांतों को समझना, पहला सिद्धांत सब कुछ कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं। दूसरा, जो हमारे पास है वो भी चला जाने वाला है, फिर कैसा युद्ध, फिर कैसा द्वेष, फिर कैसा संग्रह करने की भावना। ये तो है ही कृष्ण का, मेरा है ही नहीं कुछ, ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर हमारा होता तो हम इसको अपने पास बनाए रखते। अपना किसे कहा जाता है? जैसे आप कोई कपड़ा खरीद कर लाते हो, आप कहते हो मेरा कपड़ा है। क्यों कहते हो? क्योंकि आप जैसे चाहो उसको रख सकते हो, जब चाहे पहन सकते हो, जब चाहे फेंक सकते हो। लेकिन क्या इस शरीर के साथ ऐसा कर सकते हो? क्या इस शरीर को जब चाहे आप छोड़ सकते हो, जब चाहे इसको बनाए रख सकते हो, मृत्यु से परे रह सकते हो? नहीं। इसलिए शरीर भी हमारा नहीं है, ये तो केवल हम मानते हैं कि हमारा शरीर है, इसीलिए कष्ट भोगते हैं, ये अहंकार है। तो ये सिद्धांत है बड़े सरल भक्ति के, कृष्ण भावनामृत के, जो हमें बड़ी सुखी जीवन की ओर ले जाते हैं। क्या है सुख, कौन सा है सुखी जीवन? सब कुछ कृष्ण का है। कितनी अच्छी भावना है ये, जो व्यक्ति इस भावना में आ जाता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, बड़ा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस भावना में रहता है कि मेरा है, वो कभी सुखी नहीं रहता, कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि अपनी चीज को बचाने का प्रयास करता और बढ़ाने का प्रयास करता। लेकिन जो व्यक्ति जानता है कि श्री कृष्ण का है और है भी क्षण भंगुर, थोड़े समय, न ये शरीर रहेगा, न संबंधी रहेंगे, न धन रहेगा, न संपत्ति रहेगी, फिर किससे द्वेष, फिर क्यों क्रोध, फिर क्यों लोभ? लेकिन इन चीजों को समझते नहीं, अहंकार। तो नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया कि मैंने कामदेव को भी परास्त कर दिया। शिवजी के पास गए और जाते ही शिवजी ने पूछा, कहां से आए नारद मुनि, क्या बात है, बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तो तुरंत उन्होंने बताया, आपको पता है मैंने अभी अभी कामदेव को परास्त किया। शिवजी जान गए अहंकार है हृदय में। देखिए, हम लोग जब कुछ करते हैं तो हमारी इच्छा होती है हम जाकर बताएं अपनों को या हमारे जानने वालों को, अरे पता है मैंने ऐसा ऐसा किया, बड़ा अच्छा। बच्चा स्कूल में पास होता है, भाग कर आता है अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर दिखाने के लिए, देखो मुझे A+ मिला है या B- मिला, जो भी है दिखाता है लाकर। बड़े हो जाते हैं, कॉलेज की रिपोर्ट, अच्छा पैसा कमाता है, दिखाना चाहता है अपने संबंधियों को, देखो पैसा है मेरे पास। तो नारद मुनि भी अहंकार के कारण उनके हृदय में ये भाव आ गया, शिव जी को बताने लगे। शिव जी ने कहा, नारद एक काम करना, कभी भगवान से मिलो ना तो ये बात मत कहना, चेतावनी देता हूं तुम्हें, इस बात का वर्णन कभी श्री हरि से मत करना, क्योंकि वो जानते थे कि नारद तो भगवान से मिलते हैं और ये अहंकार के कारण वो बोलेंगे भी, तो उन्होंने कहा कभी मत करना। खैर नारद मुनि गए भगवान से मिले, भगवान ने पूछा नारद सब ठीक ठाक तो है? नारद ने कहा आपकी कृपा है, आपकी कृपा से सब सारा जगत चल रहा है, सब कुछ ठीक है, तुम बड़े प्रसन्न लग रहे हो। और नारद मुनि शुरू हो गए अभी अभी शिव जी ने कहा था करना नहीं कहना नहीं, खास करके कहा था भगवान को मत कहना। नारद मुनि बोलने लगे कि कामदेव आए थे, इतना ऐसा ऐसा हुआ, और फिर उन्होंने अहंकारवश ही कहा प्रभु आपकी ही कृपा है, आपकी कृपा से हुआ, लेकिन हृदय में अहंकार था, किया तो मैंने ना, आपकी कृपा से भी हुआ तो आपकी कृपा का पात्र कौन है? मैं, तो श्रेष्ठ कौन है? मैं। देखिए किस तरह से अहंकार घुसता है ना, ऊपरी तौर से हम कह रहे हैं सब भगवान की कृपा है, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है भक्ति मार्ग में या भौतिक जगत में भी, तो हम कह देते हैं ये तो भगवान की कृपा है, मेरा क्या है। कभी कभी कोई भक्त बहुत अच्छा प्रसाद बनाते हैं, हम लोग उनसे कहते हैं प्रभु जी प्रसाद बहुत अच्छा, ये तो राधा रानी की कृपा है। कभी और कुछ होता है तो ये तो इनकी कृपा है, लेकिन कृपा किसके ऊपर हुई है? मेरे ऊपर, इसलिए श्रेष्ठ कौन है? मैं श्रेष्ठ हूँ। अहंकार, अहंकार से कहते, तो ये बड़ा सूक्ष्म चीज है, हृदय में प्रवेश कर जाता है। हम बाहरी दृष्टि से बड़े, नारद मुनि बड़े नम्र कह रहे प्रभु आपकी कृपा है, लेकिन हृदय में अहंकार है कि किया तो मैंने, परास्त किया है, इसीलिए बता रहा हूं आपको। तो क्या भूल गए नारद मुनि कि भगवान कौन है? परमात्मा है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। आपने जो कार्य किया उसको करने से पहले भगवान जानते थे क्या होने वाला है, फिर क्यों भगवान को बता रहे हैं? अहंकार, भूल चुके थे नारद मुनि। तो भगवान ने भी देख लिया कि नारद के तो हृदय में थोड़ा अहंकार हो गया है अपनी तपस्या का, अपने ब्रह्मचर्य का, कि मैं बड़ा श्रेष्ठ हूँ कामदेव को। वैसे कामदेव को परास्त करना कोई छोटी बात नहीं है, इस जगत के ब्रह्मचारी तो कामदेव के क्या कहते घर में झाड़ू लगाने वाले को भी परास्त नहीं कर पाते, लेकिन वहां तो कामदेव को कर लिया। लेकिन फिर भी अहंकार। तो नारद मुनि से कहा भगवान ने कि बहुत अच्छा है नारद, तुम्हारे तो नाम सुनने मात्र से जीवों का उद्धार हो जाता है, जीव अपने लोग अपने इंद्रियों को वश में रख पाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या कहना। तो नारद मुनि और हवा में ऊपर हो गए, कहने लगे नहीं नहीं प्रभु कृपा आपकी है, आपके कारण सब है। ऐसे कई बार होता है, हम लोग भी देखते हैं, हम लोग खुद बोलते हैं ये सब भगवान की कृपा है, लेकिन मन में रहता है किया तो मैंने है, या मुझे विशेष भगवान की कृपा प्राप्त, ये भी अहंकार है। अगर कोई सोचता है कि मुझे विशेष भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, गोपियों ने सोचा रास क्रीड़ा के समय कि क्या ये तो केवल मेरे साथ है श्री कृष्ण, मेरे ऊपर विशेष कृपा है श्री कृष्ण की, देखो और किसी के साथ नहीं है, भगवान चले गए। अहंकार, तो ये भी एक अहंकार होता है जहां हम ये सोचते हैं कि भगवान मेरे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि इस तरह से थे, तो नारद मुनि ने सोचा कि अब तो बड़ी कृपा है, अब तो बहुत मैं विशेष हो गया, तो भगवान भी कृपा करना चाहते थे। तो भगवान ने अपनी माया शक्ति को इच्छा प्रकट की कि जरा नारद मुनि का जो दिमाग है वो ठिकाने पर लेकर आओ। तो जहाँ से नारद मुनि जा रहे थे वहाँ पर माया देवी ने एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया, बड़ी सुंदर नगरी, इंद्र की नगरी से भी ज़्यादा ऐश्वर्यशाली नगरी, जिसके राजा हुए शीलध्वज, एक राजा भी बना दिए शीलध्वज, और उनकी एक बहुत सुंदर पुत्री विश्व मोहिनी, देखिए नाम भी विश्व मोहिनी, विश्व में नारद मुनि भी आते हैं, तो विश्व मोहिनी उनकी पुत्री और राजा शीलध्वज और बहुत सुंदर नगरी, पूरी नगरी बसा दी माया देवी ने। नारद मुनि जा रहे थे, अचानक नगरी दिखाई दी, नारद मुनि ने प्रवेश किया, क्योंकि नारद मुनि तो प्रचारक हैं, जगह जगह जाकर भगवान का नाम देते हैं लोगों को। तो वहाँ गए, लोगों को बात करते सुना, तो बात करते करते सुना कि राजा की जो पुत्री है राजकुमारी, वो बहुत सुंदर है और राजा उसका विवाह करने वाले हैं। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, जाकर उपदेश देता हूँ राजा को। राजा के पास गए तो राजा ने प्रणाम किया, स्वागत किया। नारद मुनि ने कहा सुना है आप अपनी पुत्री का विवाह करने वाले हैं। तो राजा ने कहा हाँ, स्वयंवर होगा, वो अपने आप चुनेगी, मैं अभी बुलाता हूँ। विश्व मोहिनी को बुलाया और जैसे ही वो सामने आई, नारद मुनि क्या कहते हैं हिंदी में, कहते चारों खाने चित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर थी। और नारद मुनि अपना ब्रह्मचर्य भूल गए। राजा ने कहा मुनिवर उपदेश दीजिए। अब नारद मुनि क्या उपदेश दे। नारद मुनि तो मन में सोचने लगे कि काश इससे विवाह हो जाए मेरा, इतनी सुंदर है, प्रभावित हो गए। तो फिर खैर थोड़ा बहुत तो कुछ कहा उन्होंने ऊपर ऊपर, लेकिन मन में हृदय में एक ही भावना, एक ही विचार कि कैसे मैं इससे विवाह करूं। तो उन्होंने राजा से पूछा कि कब है स्वयंवर। राजा ने बताया ऐसे ऐसे दिन स्वयंवर है, और ये जिसको जिसके गले में हार डाल देगी मैं उससे विवाह करवा दूंगा इसका। तो नारद मुनि अब सोचने लगे कि क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो मेरे ही गले में हार डाले, तो ये कब हो सकता है, मुझे बहुत सुंदर होना चाहिए। तो नारद मुनि अब भगवान का स्मरण करने लगे, बोले अब मैं पहले भगवान के पास जाता हूँ, उनको कहूँगा मुझे बहुत सुंदर बना दे। लेकिन उनका नहीं नहीं अभी समय नहीं है इतना वहां तक जाने के लिए। वहीं पर तीव्र स्मरण किया भगवान का, भगवान प्रकट हो गए। नारद मुनि जब स्मरण करें तो भगवान क्यों नहीं आएंगे। तो भगवान आए, भगवान ने कहा नारद से क्या बात है। नारद ने याद किया, उसने कहा प्रभु आज तक मैं आपकी ही कृपा पर रहा हूँ, अभी भी आपकी कृपा चाहता हूँ। तो क्या चाहते हो नारद। तो नारद मुनि ने कहा कि देखिए वो एक देश है, राजा शीलध्वज की पुत्री है विश्व मोहिनी, तो मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है कि मैं उससे विवाह करूं। तो अगर आप चाहें, आपकी कृपा हो, तो मैं इतना सुंदर हो जाऊंगा कि वो मुझसे विवाह करेगी, तो इसलिए आप पर छोड़ता हूं, जो मेरे लिए ठीक हो वो आप कीजिए। नारद मुनि ने गलती कर दी है बोलकर, उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए ठीक हो वो आप कीजिए, ये आपके ऊपर है, बस अब आपकी कृपा, सब आप ही कर सकते हैं। देखिए जब हम लोगों को कुछ चाहिए होता है तब हम सब भगवान ही कर सकते हैं, तब मानते हैं, लेकिन जब नहीं चाहिए होता है तो मैं कर लूँगा, आप चिंता नहीं, भगवान आप बैठे रहो अंदर वहीं पर बांसुरी पकड़ कर, बाकी सब मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन जब नहीं होता तब भगवान के सामने आप ही कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप ही कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा नारद तुम्हारे वचन सत्य हो, जो तुम्हारे लिए उचित है मैं वही करूंगा। भगवान ने ये नहीं कहा तुम्हें बहुत सुंदर बना दूंगा, जो तुम्हारे लिए उचित है वही करूंगा। नारद मुनि तो फूले नहीं समाए, उन्हें लगा कि अब तो सारा जगत मिल गया, भगवान ने जब मुझे सौंदर्य प्रदान किया है तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो मेरे सामने टिक सकेगा। तो नारद बड़े अहंकार में स्वयंवर में चले गए, अपनी शक्ल देखी भी नहीं उन्होंने, स्वयंवर में चले गए। अब स्वयंवर में पहुंचे तो वहां सारे राजा इत्यादि थे जो बड़े अपने ऐश्वर्य के साथ आए थे, उन्होंने देखा नारद मुनि को, अब देखकर क्या कहें, प्रणाम ही कर दिया कि ठीक है प्रणाम। तो नारद मुनि और गर्व में हो गए, बहुत बढ़िया है। साथ साथ में शिव जी के दो अनुयायी थे जो वहां पर आए ब्राह्मण के वेश में, दोनों आसपास बैठ गए नारद मुनि के, और नारद मुनि को देखकर कहने लगे भगवान ने क्या बनाया है। नारद मुनि को देखकर, नारद मुनि और अब तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो कहने लगे भगवान ने क्या रूप प्रदान किया है। तो खैर कथा ज्यादा लंबी नहीं, तो विश्व मोहिनी अपने हाथ में वरमाला लेकर आई, और जैसे उन्होंने प्रवेश किया तो इस तरफ नारद मुनि बैठे थे, उन्होंने देखा तो देखते ही क्योंकि उनको दिखाई दिया जो भगवान ने उनका रूप दिया था नारद मुनि को, उनका बंदर का चेहरा था, नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान हो गया था और शरीर भी ऐसे ही पूरा लंबा चौड़ा, तो देखकर ही उसने इधर जाना ही नहीं, तो उसने अपना मुंह फेर लिया कि उधर देखना ही नहीं है, दूसरी तरफ देख कर चल रही। तो नारद मुनि अब बैठे हैं कि बस अब आएगी, और वो आ रही है आ रही है आ रही है और जा रही है। अब नारद मुनि तो सोच रहे क्या हुआ ये। अब सोचिए कोई अगर बहुत आशा लगाकर बैठा हो और उसकी बेचारे की आशाओं पर पानी का पूरा समुद्र ही फिर जाए तो क्या होगा। तो नारद मुनि ऐसे ही वो चली गई, उन्होंने देखा भी नहीं। तो नारद मुनि को बड़ा क्रोध आया, और उसी समय भगवान ने स्वयं एक बड़ा सुंदर राजा का रूप लिया, और ये जो विश्व मोहिनी थी इन्होंने जाकर भगवान के गले में माला डाल दी, वरमाला विवाह हो गया। अब नारद को तो बड़ा क्रोध आ गया कि क्या हुआ, उसको समझ नहीं आया। तो फिर उस समय जाकर, उस समय कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अरे आप आए थे विवाह करने इस सुंदरी से, जाकर अपना पहले मुंह देखिए। तब नारद को पता चला कि कुछ गड़बड़ है, अभी तक तो वो सोच रहे थे मेरे से सुंदर और कोई है ही नहीं। तो तुरंत गए जल में, अपना चेहरा देखा तो बड़े हैरान, बंदर का चेहरा। तो उन्हें बड़ा क्रोध आया, पहले तो जो दो शिवजी के अनुयायी साथ में बैठे थे उनको श्राप दिया क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे तब से कि क्या क्या बनाया है भगवान ने, पता नहीं वो सच भी बोल रहे थे कि क्या बनाया है और फिर अब उन्होंने कहा कि अब मुझे भगवान के हरि के पास जाना है, और इतने गुस्से में थे कि सोच रहे थे अब आज उन्हें श्राप दे दूंगा मैं। देखिए अहंकार जब व्यक्ति का बढ़ता है तो कोई सीमा नहीं रहती उसकी। आज वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने ही स्वामी को श्राप दूंगा, ये सब भूल गए कि ये जो शक्ति है श्राप देने की वो भी उनसे आती है। तुम नारद हो किस लिए, क्योंकि तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण हैं, श्री हरि हैं, इसलिए तुम नारद हो। हम लोग जगत में भक्तों का गुणगान करते हैं। भक्तों का गुणगान क्यों किया जाता है, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, इसलिए नहीं कि वो एक कोई व्यक्ति है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान से संबंधित हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद को हम लोग क्यों मान सम्मान देते हैं, क्या है श्रील प्रभुपाद में, भगवान की भक्ति, भगवान से संबंध, भगवान के प्रति प्रेम। तो नारद भूल गए कि जिन व्यक्ति को, जिन श्री हरि को मैं श्राप देने की बात सोच रहा हूं, वो मेरे स्वामी है, सब कुछ उनसे आता है। तो नारद मुनि बड़ी तीव्रता से जाने लगे, और भगवान भी सामने से आ गए। भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, जान गए कि नारद मुझे श्राप देना चाहते हैं, तो उनको क्यों कष्ट दूं, मैं ही चलता हूं। तो भगवान आए, साथ में विश्व मोहिनी भी थी, और जब आए वहां पर बड़ा ऐश्वर्य दिखाई दिया, तो नारद मुनि ने भगवान से प्रश्न किया, और नारद मुनि ने कहा कि, नारद मुनि प्रश्न ही नहीं, उनको निंदा करने लगे भगवान की कि आपको बड़ा अहंकार हो गया है, लक्ष्मी का अहंकार हो गया है आपको, ऐश्वर्य का अहंकार हो गया है आपको, आप लीलाएं करते हैं, असुरों को मारते हैं, इसका अहंकार हो गया है आपको, इत्यादि इत्यादि जो मन में आया बोलती है। और फिर श्राप दिया भगवान को। नारद मुनि ने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने मेरा मुख, मेरा मुंह वानर की तरह बनाया है, तो आपकी भी सहायता वानर ही केवल करेंगे और कोई नहीं करेगा। और दूसरा श्राप देता हूं कि आपकी वजह से मुझे इस विश्व मोहिनी का वियोग हुआ है, तो आपको भी एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा, इस श्राप में आपको देता हूं। तो भगवान ने स्वीकार किया, और फिर भगवान ने अपनी माया शक्ति को हटा लिया नारद के ऊपर से। ये सब जो हो रहा था भगवान की माया शक्ति के प्रभाव से था, नारद मुनि नहीं कर रहे थे। नारद मुनि तो महान भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं। तो भगवान ने फिर उस शक्ति को हटा लिया, और अचानक नारद को सब पता चला, और नारद ने बड़ी क्षमा याचना कि मैंने क्या कर दिया, मैं क्या कर रहा था, क्षमा याचना चाह। देखिए भगवान की माया शक्ति बड़ी प्रबल होती है। एक बार एक ऋषि ने देखने की इच्छा की, भगवान से प्रार्थना की, क्या चाहते हो? बस आपकी माया शक्ति का दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान के देख नहीं पाओगे, नहीं आपकी शक्ति। तो भगवान ने ऐसा उसको दृश्य दिखाया कि उनको समझ नहीं आया क्या हो रहा। प्रलय हो रहा है, प्रलय में वो डूब रहे हैं। अचानक डूबते डूबते एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया जो अपना अंगूठा पी रहा है अपने मुंह में डाल के, छोटा सा बालक है। और अचानक उसने सांस ली तो ये सारा पानी मुंह में चला गया, वो भी अंदर चले गए। हैरान हो गए, ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आया। फिर बाहर आ गए और फिर देखा जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं। भगवान ने कहा ये मेरी माया शक्ति है। तो नारद से जब माया शक्ति हटा ली तब नारद को पता चला कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, श्राप दे दिया। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, ये भी मेरी ही योजना से हुआ है, मैं चाहता हूं। तो भगवान श्री राम के रूप में आना चाहते थे जहां उनको स्त्री का वियोग हो जैसे नारद को हुआ, और साथ साथ जो वानर हैं उनकी सहायता करें। तो इसीलिए भगवान ने ये लीला रची और आगे चलकर फिर श्री रामचंद्र जी का रूप उन्होंने अवतार लिया। तो ऐसी ये कथाएं हैं कि कैसे श्री रामचंद्र भगवान के अवतार जो प्रकट होते हैं अलग अलग कारणों से। तो अब दशरथ महाराज जिनको पुत्र की प्राप्ति करनी थी, तो वे सोच रहे थे कि मुझे अब यज्ञ करना चाहिए, एक ऐसा यज्ञ करूं जिससे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि बिना पुत्र के अगर मैं मर गया तो फिर इस राज्य का क्या होगा, जो छोटे छोटे राजा हैं मेरे अधीन वो आपस में लड़ बैठेंगे और उनमें से कोई एक अयोग्य व्यक्ति राजा बन जाएगा तो फिर मेरा कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए एक पुत्र की कामना से उन्होंने यज्ञ करने का सोचा। वैसे एक इस विषय में एक लोक कथा बड़ी प्रचलित है, लोक कथा है, पुराणों में इसका वर्णन या रामायण में नहीं है, लेकिन ऐसे ही लोक कथाएं इस विषय में हैं। रामायण से जुड़ी बहुत सी लोक कथाएं हैं। तो एक लोक कथा ये है कि एक समय जब भगवान श्री राम का प्राकट्य नहीं हुआ था, दशरथ महाराज चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा, तो उनके मित्र आए जटायु। जटायु एक बड़े वृक्ष पर बैठे थे और नीचे कुछ ऋषि मुनि चर्चा कर रहे थे। अरे जानते हो भगवान प्रकट होने वाले हैं। अच्छा कहाँ प्रकट हो रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, दशरथ के घर में प्रकट होने वाले हैं बहुत जल्दी। अच्छा हाँ, और चार रूपों में प्रकट होंगे, एक भी नहीं, चार भाइयों के रूप में, और जो सबसे बड़े होंगे वो स्वयं भगवान होंगे और बाकी उनके अंश अवतार। तो ये बात जटायु ने सुनी, जटायु मित्र थे, तुरंत आए दशरथ महाराज के पास। दशरथ महाराज विलाप कर रहे थे कि हाय हाय कोई पुत्र नहीं है। जटायु ने कहा दशरथ महाराज आपको एक मैं बहुत अच्छी खबर सुनाता हूँ। क्या खबर है, क्या सूचना है? आपके पुत्र नहीं है, आप चिंता में हो? हाँ हूँ, मैं आपको उपाय बताता हूँ। क्योंकि अभी भी उन्होंने सुना था कि दशरथ महाराज एक यज्ञ करेंगे, फिर यज्ञ के द्वारा यज्ञ पुरुष आएंगे इत्यादि, और फिर संतान होगी। तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? सबसे बड़ा वाला पुत्र आप मुझे दे देना, बाकी तीन आप रख लेना, कोई चिंता नहीं। तो दशरथ महाराज ने सोचा कि अभी तो एक भी नहीं है, तब चार होंगे, अब चार में से एक देना है, तीन तो फिर भी रहेंगे, कम से कम मेरा राज्य तो चलेगा। तथास्तु, तुरंत दे दिया, कोई बात नहीं, तुम बताओ। जटायु ने कहा आप एक यज्ञ कीजिए, जब यज्ञ करेंगे तो फिर यज्ञ से यज्ञ पुरुष आएंगे, आपको खीर देंगे, पायसम देंगे, वो आप बांट देना रानियों में, और आपके चार संतान होंगे। दशरथ महाराज ने किया, चार संतानें हुई। जब थोड़ी सी बड़ी हुई, दशरथ महाराज तो आसक्त हो गए विशेषतः रामचंद्र जी से। जब थोड़े बड़े हुए तो जटायु आए वापस। जटायु ने कहा दशरथ महाराज से, महाराज याद है आपने क्या कहा था? दशरथ महाराज ने कहा कुछ याद नहीं। जटायु ने कहा महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसे कैसे, आपको तो आपने वचन दिया था। तो दशरथ महाराज ने कहा कौन सा वचन, मुझे कुछ याद नहीं, अब तक राम थोड़े बड़े हो गए थे। ये कथा बड़ी सुंदर है, थोड़ी सी विस्तार में है, इसलिए इसको अगले मंगलवार को कहेंगे। अभी भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान तैयार हैं हम सबको दर्शन देने के लिए, तो अभी भगवान के दर्शन करेंगे और अगले मंगलवार ये रामायण की कथा आगे जारी रहेगी। अगले मंगलवार हम ऋषि श्रृंग के जन्म का वर्णन करेंगे और अगर हो सका तो थोड़ा बहुत रावण का इतिहास भी कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you.